जैसे ही संजना ने राजेश को आखिरी बार देखा, वो अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से रो पड़ी और गुस्से से थरथराती हुई वो थूक निगलते हुए बोल पड़ी थी, मेरी ये साजिश भी नाकामयाब हो गई। मुझे तो लगा था इस राजेश से मौका देखकर अंश को अगवा करा लूंगी और उसका इल्जाम उस वसुंधरा वीर पर डाल दूंगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब मुझे कुछ करना ही होगा। इस आस्था को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। और ऊपर से वो बेवकूफ सम्राट और राजवीर चिंदल दोनों के दोनों सनकी हैं, दोनों के दोनों पागल हैं, दोनों कुछ करते ही नहीं हैं, हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, ये नहीं कि इस आस्था की जान ही ले ले। कहीं ना कहीं संजना पूरी तरह से गुस्से और नफरत से गुजर रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो कुछ दिनों तक आस्था पर नजर रखेगी और उसके बाद सीधे तरीके से आस्था की जान ले लेगी। वहीं दूसरी ओर अब सभी लड़कियां खूबसूरत सी साड़ियां पहनकर सभी लोगों से विदा लेकर वहां से निकल चुकी थीं। रश्मि ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है, लेकिन आस्था ने बड़े ही शालीन और विनम्र तरीके से मना करते हुए कहा था, दीदी अभी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे ही आपकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार आएगा हम आपको अपने साथ जरूर ले जाएंगे, आप एक बार ठीक हो जाइए फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस्था की ये बातें सुनकर रश्मि हल्के से मुस्कुराती थी। उसने अपने दिल को सुकून दिया और खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली थी, ठीक है ध्यान से जाना, ध्यान से पूजा करना और जल्दी वापस आ जाना। सभी लोग रश्मि से मिलने के बाद नानी माँ और बच्चों को एक साथ बाय बोलकर वहां से बाहर निकल गए थे। सभी लोगों को यही लग रहा था कि वे लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, इसलिए किसी ने भी उनसे ज्यादा पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन असल में वे कहाँ जा रही थीं ये बात सिर्फ आस्था और बाकी लड़कियों ही अच्छी तरह से जानती थीं। एक बार फिर से सभी लड़कियों ने बाहर आकर गहरी सांस ली थी। आस्था ने मन ही मन भगवान जी से पहले ही ढेर सारी माफी मांग ली थी कि उनके नाम पर वो इस तरीके से घर से बाहर जा रही है। फिलहाल रौनक, राधिका और एंजल तीनों ने उसे हौसला देते हुए कहा था, शांत हो जाओ आस्था, तुम जो कुछ भी कर रही हो सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपने परिवार के लिए कर रही हो, और परिवार की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, उसे तो भगवान भी खुद माफ कर देते हैं, तुम ज्यादा परेशान मत हो, चलो फटाफट चलते हैं। ये बोलकर अब रौनक और बाकी सब वहां से जाने लगे थे। वहीं मारिया ने उन लोगों को देखकर कहा था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ अंदर तो नहीं जा सकती, लेकिन बाहर आप लोगों का इंतजार जरूर करूंगी, और अगर आप लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे, और डोंट वरी मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं इस तरीके से खुद को कवर करके रखूंगी कि कोई भी मुझे देख ना पाए। ये सुनकर सभी हल्के से मुस्कुरा दिए थे, लेकिन तभी आस्था ने कुछ इशारों और शब्दों में मारिया को समझाना शुरू कर दिया था कि वो किस तरीके से वहां का माहौल क्रिएट करेगी और इस बीच उसे क्या क्या करना है। ये सुनकर मारिया ने आस्था से कहा था कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्वीन, और वैसे भी वो हर तरीके से तैयार है। फिलहाल अपने एक बड़े मकसद के तहत अब वे खूबसूरत सी साड़ियों में डाक विला की ओर जाने लगे थे। बहुत पहले से ही सब कुछ प्लान किया जा चुका था, और जल्दी ही डाक विला के सामने उनकी गाड़ी रुकी। वहीं दूसरी ओर अपना प्लान पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद संजना को लगने लगा जैसे उसके सारे रास्ते खत्म हो गए हों। उसे तो लगा था कि राजेश को भड़काकर वो अंश को अगवा करवा लेगी और उसके बाद वो वीर उसमें फंस जाएगा, क्योंकि उसकी नज़र 2400 घंटे मेंशन पर थी। और जब उसे लगा था कि उस वक्त वसुंधरा और वीर घर से बाहर थे, तभी उसने राजेश को अंश को किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन अब तो सब कुछ एक बार फिर उसके हाथ से निकल चुका था। उसके गुस्से और नफरत की अब कोई सीमा नहीं थी, और वैसे भी आज उसे अपने पिता से मिलने के लिए भी जाना था। उसने सोचा कि बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। ये सोचकर वो जल्दी ही मुंह ढककर जेल में जा पहुंची थी, क्योंकि जिस तरीके से वो डाक विला से चोरी छिपे आई थी, उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो इस तरीके से डाक विला में जाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि इस बार सम्राट या वो बूढ़ा राजवीर उसकी जान ही ले ले। इसलिए उसने तय किया था कि जो भी करना है अकेले अपने दम पर ही करना होगा। उसकी पहली कोशिश यही रहने वाली थी कि वो अरमान को वापस पाना चाहती थी, लेकिन अगर उसे ऐसा लगा कि अरमान उससे बहुत दूर जा चुका है तो वो आस्था की बलि ले लेगी, लेकिन उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगी। इसी सोच के साथ वो जेल के ठीक सामने मौजूद थी। अच्छे खासे पैसे जेलर को खिलाने के बाद वो अपने पिता के ठीक सामने खड़ी थी। उसे एक घंटे का समय दिया गया था, एक घंटे तक ही वो अपने पिता के साथ जेल में रह सकती थी, उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तब संजना ने राहत की सांस ली और अपने पिता दुर्जन सिंह को देखने लगी थी। दुर्जन सिंह ने इधर उधर देखा, फिर अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले थे, कैसी है हमारी रानी बिटिया। तभी संजना गुस्से से फट पड़ी और बोली थी, आप तो यहाँ जेल में बैठ गए हैं, क्या आपको नहीं पता कि आपकी बिटिया को इस वक्त कितनी ज्यादा जरूरत है? मेरी मदद कोई भी नहीं कर रहा है, मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। आस्था का नाम सुनकर दुर्जन सिंह चौंक पड़े थे और बोले थे, क्या हुआ है, तुम आस्था से कब मिली? तब जल्दी ही संजना ने दुर्जन सिंह को सारी बातें बता दी थी कि किस तरीके से उसे उस इंसान से प्यार हो गया था जो कि आस्था का पति है। अब ये सुनकर तो दुर्जन सिंह का खून खौल उठा था। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? उस आदमी ने तुम्हारे पिता को जेल की सलाखों के अंदर भिजवाया है और तुम उसके लिए प्यार करने का दावा कर रही हो। तब संजना थोड़ी सी बिखरी हुई हालत में बोली थी, आप कुछ नहीं जानते पिताजी, आपने आज तक मेरी जायज नाजायज हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन मुझे अरमान सिंघानिया चाहिए पिताजी, कुछ कीजिए पिताजी, प्लीज कुछ कीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं उसे बर्बाद कर दूं, लेकिन मैं उसकी जान भी नहीं ले पा रही हूं, मैं उसे सिर्फ पाना चाहती हूं। आपको कुछ भी करना होगा, मुझे अरमान सिंघानिया को मेरी झोली में डालना ही होगा। जैसे ही संजना ने इस तरीके की बातें करना शुरू किया, दुर्जन सिंह पूरी तरह से हैरानी में डूब गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को क्या जवाब दें। एक पल के लिए उन्होंने अपनी बेटी को समझने की कोशिश करते हुए धीमे स्वर में बोले थे, बेटा तुम्हें इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी आस्था तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बहन जैसी लगती है, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दे और तुम्हें माफ कर दे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब तो ये बदले की भावना पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। फिर उन्होंने भारी आवाज में आगे कहा था, और वैसे भी बदले की भावना में कुछ नहीं रखा होता। अपने पिता का हाल देख रही हो तुम? मैं किस तरीके से चौड़ा होकर पूरे गांव में चला करता था, लेकिन अपने लालच की वजह से आज यहां बैठा हूं। और अरमान सिंघानिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि वो मुझे यहां से जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं निकलने देगा। ये सुनकर संजना की आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो अपने पिता को घूरते हुए बोली थी, आज तक आपने मेरी हर जायज नाजायज इच्छा पूरी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर निकलेंगे पापा। आपको इस तरीके से अरमान से डरने की जरूरत नहीं है, और आपने ये बात नोटिस की पापा, आप भी उससे डरते हैं जो मेरी मोहब्बत है। उसकी आवाज कांप रही थी।
मुझे लगता था कि मेरे पिता से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अरमान सिंघानिया को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे हर हाल में अरमान चाहिए पापा, हर हाल में। अगर मैं उसे अपना नहीं बना पाई तो या तो मैं उसकी जान ले लूंगी या फिर उसकी बीवी आस्था की जान ले लूंगी, और आप देखिएगा आपकी बेटी ये करके दिखाएगी। दुर्जन सिंह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संजना ने उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, अगर तुम इतनी जिद्दी हो और मेरी बात नहीं मानोगी तो एक काम करो। ये कहकर उन्होंने धीमे शब्दों में संजना को कुछ समझाना शुरू कर दिया था। संजना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई थी। उसने अपने पिता को गले लगाया, उनके माथे को चूमते हुए बोली थी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आप देखिएगा इससे मेरी कितनी मदद हो जाएगी और मैं अपना काम कर लूंगी या फिर उनकी जान ले लूंगी। ये कहते समय संजना की आंखों में खतरनाक चमक साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियों की गाड़ी सीधे विला के ठीक सामने जाकर रुक चुकी थी। आस्था के दिल की हालत इस वक्त अजीब सी थी। उसकी हार्टबीट तेज हो रही थी, लेकिन राधिका ने उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी थी, बिल्कुल परेशान मत हो, अब जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना, चलो फटाफट। वहीं मारिया ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और काला चश्मा भी लगाया हुआ था ताकि किसी को उस पर जरा सा भी शक ना हो। वो गाड़ी के बाहर खड़ी होकर बाकी सबका इंतजार करने लगी थी। सम्राट ने पहले ही अपने गार्ड्स और नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उनसे किसी भी तरह की रोक टोक या पूछताछ ना की जाए। जैसे ही आस्था की गाड़ी अंदर घुसी, सभी गार्ड्स और काम करने वाले नौकरों ने पहले ही सिर झुका दिया था। आस्था के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। सभी लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगी थीं। किसी ने कॉलेज का कोई बेवकूफी भरा टॉपिक छेड़ दिया था और सब उसी पर चर्चा करने लगी थीं। उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना था जैसे कोई स्टूडेंट्स किसी अमीर के घर में आए हों, एक्साइटेड, खुश और बेपरवाह। उन सभी लड़कियों के चेहरों पर वही हर्षोल्लास साफ दिखाई दे रहा था। आस्था जानबूझकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त सीसीटीवी कैमरों के जरिए ब्लैक डेविल की नजरें उसी पर होंगी। अगर उसके चेहरे पर नफरत या गुस्सा दिखा तो वो उसे पहले ही नजर में पहचान लेगा और उनका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बेहद संभल कर आगे बढ़ रही थी। आसपास के खूबसूरत गार्डन, रंग बिरंगे फूल और सजावट देखकर वे आपस में बातें करने लगी थीं। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, सो ब्यूटिफुल। रौनक, राधिका और एंजल तीनों मिलकर अलग अलग पोज में सेल्फी लेने लगी थीं। सम्राट बड़ी स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए आस्था और बाकी सबको देख रहा था। वो जानता था कि ये सब यंगस्टर्स हैं और इतनी खूबसूरत जगह पर आकर सेल्फी लेना, फोटोशूट करना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। हालांकि वहां किसी भी तरह की सेल्फी लेना मना था, लेकिन सम्राट ने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। वो आस्था को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। काफी देर तक सेल्फी और हंसी मजाक के बाद वे सब आगे बढ़ गए थे। तभी रौनक ने हल्की आवाज में कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस सेल्फी वाले नाटक के बाद उसे 100% यकीन हो गया होगा कि हम वाकई कॉलेज के छुट्टियों पर आए हुए बच्चे ही हैं।